بارش ماپ کی وجود کرے گی اور اس میں دو تین لوگوں کو جو انہوں نے کٹور پریشن کیا ہے ان کو
पुष्कल विपुल संख्या में होने के साथ साथ कितना तत्वपूर्ण, कितना महत्वपूर्ण और शास्त्र के समस्त सत्व को, सार को अपने में समाहित किया हुआ विश्व मंगल के लिए जनजीवन में श्री राधा माधव के असमुद्ध रस का संचरण करने के लिए भक्ति पर तत्व का परम रहस्य ज्ञापन करने के लिए और भक्तों के लिए कुछ अपने कुछ अखंड तत्व दिए अचिंत्य रस के समास स्वादन करने के लिए समवेद रूप में संकलित है సమర్థులు, గుర్తు పాత్రలు, భక్తులు, భగవత్తులు నారవిందు సమర్పించాను. ఉస్కే మాధ్యం సే ఆరవిందు కీ అతి హర్షమయ గీతాం కే సమాస్వాదం కీ దివ్య సుయోగ రాశి, సౌభాగ్య రాశి శ్రవణ కర్తే. కుచ్ శబ్దో మే उसको अभिव्यक्त करना संभव नहीं है. मुझे गुरुदेव की कृपा से योग्यता उतनी न होने पर भी, पांडित्य उतना न होने पर भी, और सक्षमता भी न होने पर भी, मुझे अनेक विश्वविद्यालयों में, बड़ौदा विश्वविद्यालय में, दरभंगा विश्वविद्यालय में, और काशी विश्वविद्यालय में श्री गोस्वामी पाद के, श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के संदर्भ में प्रवचन करने का, और कई सेमिनारों में उनके साहित्य पर अपने भाव अभिव्यक्त करने का शुरू प्राप्त हुआ है. उसका मुझे एक बड़ा लाभ ये मिला कि प्राय कालिदास भवभूति नाग इंद्रनाथ श्रीहर्ष बड़े बड़े संस्कृत के उद्भव महाकवि हैं. उनके विषय में अनेक लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, चर्चा की, तो विषय की तालिका में न होने पर भी मैंने कहा कि इन प्राचीन कवियों के स्थान पर मैं एक वैष्णव विश्व में उनका भौतिक रूप में गुरुभाव है, लेकिन समस्त श्रद्धालुओं के प्राणों में तो नित्य आविर्भाव है. और ये ग्रंथों का मुख्य छोटा सा सूत्र है, भागवत सवे भजताम रस काम थे, इसी को भी उत्सव कहते हैं, रस को. और रस है परमात्मा का, रसो वैष्णव. भगवान भी गीता में कहते हैं रस है वत्सु कौन्तेय शब्दं खे पौरुषं ऋषि. मैं तीन रूपों में सर्वत्र प्रकट हूँ, स्थित हूँ और अपनी कृपा का परमेश्वर करता रहता हूँ. जिनके हृदय में थोड़ी करुणा है, जिनके हृदय द्रवित है अक्ष, उस दिव्य करुणा जिनका स्वभाव बन गई है, उसके जिनका स्वभाव बन गई है, स्वभाव में करुणा नहीं है तो न दर्शन का उद्भव है, न काव्य का उद्भाव है, न साहित्य संहिता का उदय है, और अंतर हृदय के भीतर एक दिव्याति दिव्य भाव का समागम और संगम संभव है. तो मैंने कहा मैं तो किस कालिदास पर, भवभूति पर, बाणभट्ट पर या श्रीहर्ष पर न कह करके सभापति जी से विशेष अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ. मैं श्री गोस्वामी के काव्य तंत्र पर कुछ अपने विचार अभिव्यक्त करूँ, और वो उन्होंने स्वीकार कर लिया. तब मैंने उज्ज्वल जीवन भक्ति रखामृत सिंधु और अन्य अन्य सब ग्रंथों का आश्रय लेकर के जब कुछ निवेदन करने का अपना प्रयास किया तो उपरांत सारा सभा मंडित द्रवित हो गया और मुझे विशेष रूप से एक प्रमाण मंत्र प्रदान हुआ कि आपने इस हिंदी साहित्य विश्व को एक अलौकिक कवि से अवगत कराया। श्रीमद रूप गोस्वामी का हरिदास जी की कुटी सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य और दूसरे बड़े बड़े दिग्गज विद्वान स्वयं किसी की उपमा तुलना उचित नहीं है, लेकिन भाव की असमर्थ सीमा में रहते हुए भी महाप्रभु महान नैयायिक विद्वान थे। न्याय दर्शन नास्तिक दर्शन है, नव्य न्याय प्राच्य न्याय वैशेषिक और सांख्य मूलतः नास्तिक दर्शन है, लेकिन तथापि श्रीमद् भागवत में प्रभु ने श्रीमद् भागवत प्रमाणमलम जो घोषित किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सारे नास्तिक दर्शनों को अति आस्तिक दर्शन के रूप में प्रतिपादन कर दिया गया। भागवत का वैशिष्ट्य और वहाँ जीव और ब्रह्म की समीक्षा और मीमांसा द्वैतात्वैत विशिष्टात्वैत शुद्धात्वैत द्वैतात्वैत प्रभृति छत अचिंत भेदाभेद की परात विद्या सार सर्वज्ञता संयुक्त विश्लेषण के साथ प्रतिपादन करने का जो उद्घोष हुआ श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा समन्वयात्मक सामंजस्य समीकरण के रूप में पंडित समुदाय के लिए सर्वदा वंद्य है, वेद्य है और निर्वेद की उपलब्धि कराने वाला है। निर्वेद कहते हैं परम शांति, क्योंकि बाकी तो छेद विच्छेद इन सब के साथ में वेद तत्वों का विवेचन लोग करते हैं, उद्वेग उत्पन्न होता है, आवेग पैदा होता है, संवेग पैदा होता है, लेकिन वेदांत कहता है कि निर्वेद उत्पन्न हो, लेकिन गौड़ीय दर्शन कहते हैं कि निर्वेद भी पराभूति से संपन्न नहीं है, उसमें जब तक वेद सार सर्वत्र कृष्ण के दिव्य परात्म रस के उन्मेष का अवकाश उपलब्ध न हो। रूप गोस्वामी पाठ का एक छोटा सा संदर्भ मैं आपको सुनाता हूँ। वहां पर उनकी कृपा था, हिंदी के संस्कृत के बहुत बड़े कहना चाहिए सर्वोत्कृष्ट श्रीहर्ष बहुत बड़े विद्वान जिनका रस गंगाधर श्रीहर्ष दो महाकाव्य पूरे आचार्यों में भी नहीं पढ़ाया जाता, केवल चार अध्याय पढ़ाए जाते हैं। एक यावनी कन्या से थोड़ा प्रणयात्मक संबंध हो जाने के उपरांत काशी के विद्वानों ने उनको लांग गला कर पीने का प्रांगण दिया, दोनों गंगा के किनारे बैठ करके प्राण त्याग करने का संकल्प किया और जब वो गंगा की धारा में कूदने लगे तो स्वयं गंगा पड़ गया। तो पंडित राज आपका इतना महारह महामूल्य जीवन इन पंडितों के कर्मकांडी पंडितों के तो पंडित तो है लेकिन पूर्वी मांसा के Kuterima lu sami jatah Tuhan di bentuk. Kuterima lu sami di Al-Qusam dan Al-Qusam budaya. Jadi penetrasi kembali negara kita kaku penetrasi cakar mempunyai. Dengan nanti cerita wilayah ini, saya mesti alhamdulillah untuk kita memiliki kepentingan lahat terhadap fruit-fruitnya. Kalau itu memang pastinya kita rambut bahu drama ini itu sesuatu yang pasti harap lari terusnya. Jadi, unsur itu kaya, upaya untuk berakhir pasca tak boleh. परिहार कैसे हो सकता है और जीवन का परिष्कार कैसे हो सकता है उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर गंगा श्री हर उनको श्री गंगा जी ने कहा जब पूरी पहुंचे जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे ग्राम और दोनों दृष्टियों से मिला रहे थे कि श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप पूरी दृष्टि से तो उतना सुंदर नहीं है और श्री महाप्रभु की ओर देखते थे मालूम जगन्नाथ के श्री विग्रह से संपूर्ण अथवा दूसरे शब्दों में हम आदिवासी लोग कहें गौरांगे मृदिमास निते मधुरिमा नेत्रां चले द्राघिमा वक्षोजे करिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यां च प्रतिमा ध्रुवो कुटिलिमा बिम्बा करे शोणिमा श्रीराधे हृदिते रसैन जडिमा धानेष्टु मे गोचर गौरां लावण्यं परमास्तुतं रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतं कान्तिः काविमहद्भुता वरतनुर्लीला गतिश्चाद्भुता द्रविभङ्गी पुनराद्भुताद्भुत्तमं यस्यास्मितं चाद्भुतं सारादाद्भुतमूर्तिरद्भुतकथं दास्यं कदा दास्यति पूर्वसौन्दर्य का पूर्वरस का मैंने कहा रस के रूप में मैं सबके भीतर हूँ रस यमक से सौंदेय शब्दम थे पौरुषम निशु सबके भीतर से रस के रूप में आकाश में शब्द के रूप से और प्रत्येक प्राणी के भीतर पौरुष के रूप से मैं उपस्थित हूँ इधर उधर की उपासनाओं से देवी देवताओं को यंत्र तंत्र मंत्र आदि के द्वारा अनंत रिद्धि सिद्धियों को प्रसन्न करने में अनवरत अभिरत रह करके अनावश्यक समय नष्ट कर रहे हो अपने भीतर ही बैठे हुए हैं तीनों को यदि सिद्ध कर लो उनका परिपाक हो जाए तुम परिपक्व हो जाओ तो जहाँ भी बैठोगे अपने ही अंतकरण में ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शेषु न तिष्ठति अंतकरण में बैठे हुए तुम्हारी प्रतीक्षारत कृष्ण का साक्षात करके असमूर्ध रस के आस्वादन का तुम्हें परम सुयोग संयोग सहज रूप में सुलभ हो जाए बहुत पड़ता थोड़ी देर में बात समझ लेता हूँ पंडित राज खड़े थे महापंडित और उसका क्या अवधान हो गया श्री हर्ष संस्कृत का सबसे कृष्ण उत्तर महाकाव्य है तो जब दर्शन दर्श हो गए महाप्रभु थोड़ी चेतना में आए पंडित राज पानी पर खड़े थे महाप्रभु ने मुस्कुराते कहा पंडित राज घबराने मुझे तो जानते नहीं है परिचय नहीं है मैंने तो केवल गंगा जी ने कहा उसी प्रेरणा से आया हूँ उन पंडित राज में जानता हूँ किसने तुम्हें भेजा है और किस संकल्प से तुम्हारा शुभागमन हुआ है मैं आपके प्रश्न का एक शब्द में उत्तर दिए देता हूँ तो बात ये है कि उस बात को समझने के लिए पांडित्य की नहीं, आप काव्य के कितने भी परिवर्तन करते हैं। इन्होंने परिभाषा बदली, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, इसके अर्थ बहुत है, और बहुत से लक्षण ग्रंथ है। हमारा लक्षण ग्रंथ भी अपूर्व है, प्राप्त होने पर भी अद्वितीय काव्य प्रेक्षाओं का, उपमाओं का, विभावनाओं का, प्रस्तावनाओं का, विश्लेष वक्तोक्तियों का समुद्र है तुम्हारा काव्य। इतने मूल्यवान शरीर को तुम कुछ पंडितों के कहने से अगर नष्ट कर देना चाहते हो, ये भगवान का अपमान है। तुमको कुछ और करने के लिए भी संसार में भेजा गया है, और मैं तुम्हें प्रायश्चित की पश्चाताप की एक बहुत सहज सरल बात बता देता हूं कि जितने पाप पराक्रमी से पराक्रमी पुरुष पूर्ण बल लगा करके, विक्रम लगा करके कर नहीं सकता है, जितने पापों को एक बार कहे हुए कृष्ण नाम मिटा देता है, एक सूर्य एक ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसे कितने ही सूर्य हैं। अर्जुन को लेकर के जब परमयोग में भगवान गए ब्राह्मण पुत्र को लाने के लिए, तो भगवान के हाथ का सुदर्शन चक्र एक मोमबत्ती के समान चमक रहा था। वो संपूर्ण परमेष्ठी मंडल श्री कृष्ण नाम के अक्षरों के मध्य में समाया हुआ है, लेकिन श्रद्धा के साथ में, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयम इंद्रिया। और इसका भाष्य श्री गुरु गोस्वामी पाद ने किया है, आदम श्रद्धा ततो साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचिष्ट तथा शक्ति ततो भाव तत् प्रेम अभ्युदंत। प्रेम के परतत्व तक पहुंचने के लिए श्रद्धावान होना जरूरी है, और श्रद्धा कोई गुरु नहीं दे सकता, श्रद्धा कोई संत भी नहीं दे सकता, श्रद्धा कोई साधना से या देवता से भी प्राप्त नहीं होती। निर्विकल्प और अविज्ञात समाधि में अनवरत सिद्ध होकर के रहने वाले भी उपयुक्त रूप में और उचित रूप में श्रद्धा की उपलब्धि नहीं कर सकते। श्रद्धा प्राप्त करने का स्थान भी एक है, पात्र भी एक है, काल भी एक है, और वो है माता का गर्भ। आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपको तो नमन जो किया जाए, प्रणाम किया जाए, वो नमन आपको नहीं है, आपकी माता को है, जिसने आपके संस्कार में श्रद्धा के अमृत का संचार किया है। और धन्यवाद उन गुरु को दिया जा सकता है जिन्होंने माली की तरह उस श्रद्धा का संपोषण करके उसे फलाद्य वृक्ष की तरह से पल्लवित और पुष्पित करके श्री वृंदावन धाम के यमुना कुलीन पधार करके उसके परिपक्व फलों के निश्चित रस के आस्वादन करने का सौभाग्य प्रदान किया। जीवन की एक अनिर्वचनीय श्रद्धा एक पैशन नहीं है, इट्स नॉट इमोशन, सेंटीमेंट नहीं, इट्स नॉट ए थिंकिंग थॉट, इट्स डिवाइनली ग्रेस्ड एंड द प्लेस फॉर इट ओनली द मदर। माता के गर्भ में किसी समय इसकी सब इसका संस्कार बीज आरोपित हुआ, जो जन्म लेने के बाद किसी, क्योंकि दो चीजें जरूरत है, करुणा, लेकिन संसार में करुणा नहीं, पीड़ा होती है। करुणा होना
ठाकुर बड़ी कृपा का
फल है, पीड़ा होती है। महाकवि शैली कहा करते हमारे जीवन के मधुरतम संगीत वही है जहाँ जीवन की अदृश्यतम करुणा का प्रवाह है। करुणा स्वभाव भूत होती है और स्वभाव पुष्ट जो नाथ कालीनाथ कह रहा है भगवान के नाम। अस्तु आप कृष्ण कृष्ण कहिए और इन सब पंडितों की बात को छोड़ करके आपके ये तो छोटा सा पाप है और पाप भी नहीं है, जीवन की अनिवार्यता है। जब हम अध्यात्म के परिवेश में आते हैं, रियल स्पिरिचुअलिटी जब हमारे भीतर उत्पन्न होती है, तब हम पर्सन नहीं रहते, एक पर्सनैलिटी हो जाते हैं। और पर्सनैलिटी की कोई कास्ट नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, प्रतिकार नहीं है, किसी प्रतिशोध की अपेक्षा नहीं है, वो किसी की अपेक्षा अपेक्षा का प्राप्त नहीं है। उसका एक ही सिद्धांत है अनिच्छा। अनिच्छा अध्यात्म विद्या की पराभूति अनिच्छिकी जिनके अंतकरण में समुदित होती है, उनके हृदय में राधा माधव के धारों का एक उत्स स्वयं उत्प्लावित होता है, जिसमें वह भी अभिषिक्त होता है और उसके चारों तरफ का क्षेत्र भी अभिषिंचित होता है और वह जीवन में उन भावों के रस का आस्वादन भी करता है, अन्यों को आस्वादन का पात्र भी बनाता है, स्वयं भी धन्य होता है, दूसरे भी कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। तो इसलिए तो श्री हर्ष से श्रीमद महाप्रभु से महाप्रभु ने कहा श्रीमद रूप गोस्वामी से कितने श्लोक हरिदासी को सुनाए, सबके चंचलतामृत के पढ़ने वाले विद्वान लोग हैं, हम ब्रजवासी लोग को विद्वान नहीं कमार कहे जाते हैं लोकल से। श्री गोस्वामी पाद में एकांत से महाप्रभु ने कहा नाम की महिमा तो सुनाओगे ना, हरिदास जी से कहा, अद्वैताचार्य से कहा, अन्य पश्चिम संपूर्ण अन्य विद्वानों से कहा, बहुत नाम की महिमा लिखी गई है, लेकिन रूप की तो आप सुनो। और ऐसा श्लोक तो सारे वर्ण मैं दूसरा नहीं है, तुंडे जनितामृत ही कृष्णे कर्णत्वी। क्या विद्वानों का अहंकार है, इतना बड़ा जब इधर धुमाधव लिखा, स्वयं सत्यभामा जी प्रकट हो गए तो पक्षपात क्यों करते हो? यदि वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा है तो द्वारिका के ऐश्वर्य मंडल की अधिष्ठात्री मैं सत्यभामा हूँ, पृथ्वी का अवतार है, चंद्रावली जी की भी एक किरण इनमें अभिनेश है, दक्षिणा नायिका श्री राधा रानी है, इसलिए सत्यभामा जी का स्वरूप भी श्री राधा रानी का, राधा रानी जी की एक किरण इनमें व्याप्त है और रुक्मणी जी का दक्षिणा भाव है, उनका दामा भाव है, लेकिन श्रीमद महाप्रभु जी द्वारा और श्री गोस्वामी पाद के द्वारा उनकी कृपा से विरुद्ध माधव ये सब स्वयं श्री सत्यभामा जी प्रकट हुई। बोले तो मेरी अपेक्षा तुमने किया नहीं है, इस ग्रंथ के दुर्भाग करो। वृद्ध माधव की नायिका श्री रुक्मणी जी रहेंगी और उस ललित माधव की नायिका मैं, इस प्रकार उसका विभाजन किया और वृद्ध माधव और ललित माधव
दक्षिण भाग और वामा भाग, इन दोनों के विशेष प्रकार के श्री कृष्ण के अंतरंग भागवत का समन्वयात्मक चिंतन करने का, आस्वादन करने का सौभाग्य गौड़ीय वैष्णवों को प्राप्त है। जीव गोस्वामी अमरनाथ संप्रदाय के श्री विठल नाथ गोस्वामी दोनों बराबर के विद्वान हैं, उन्हें लोग वैशिक अवतार कहते हैं। लेकिन दोनों बैठते थे, उन्होंने विद्वत रसबंधन की रचना की, इन्होंने सर्व संभावना की रक्षा रचना की, श्रृंगार रसमंडल और माधव माधव महोत्सव राधा कृष्ण की लीला का, मेरा स्वास्थ्य और शरीर थोड़ा उतना संतुलित नहीं है, कुछ कुछ विस्मृति भी होती है, परिश्रांति भी होती है, मैं इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। तो इन सब ग्रंथों का अवलोकन आलोचन विलोकन इन सब का स्वाध्याय किया जाए तो श्रोता की अपेक्षा ही नहीं है, मंच की अपेक्षा ही नहीं है, मंचन की अपेक्षा भी नहीं है, आत्मविभोर होकर के सब से अपनी अंतःप्रति को बटोर करके, विभोर होकर के सब ओर से समेट करके, जीवन के कोर कोर में रस की प्लावित मंदाग्नि में अवगाहन करके, जन्मांतरों के तापों ताप इन सब से मुक्ति प्राप्त करके आनंद की अचिंत्य सास्वादना का जीव सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। और इस सौभाग्य के प्रदाता श्रीमती रूप गोस्वामी पाद है। इन्हीं शब्द नीराजनों के साथ मैं कोटि कोटि नमन किया करता हूँ।
कल आने के लिए कह दीजिए, कल आप आइए
5 बजे। शिव महाप्रभु के अन्यतम परिकर श्री रूप गोस्वामी के बारे में उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया। महाप्रभु के आदेश से आप लोग स्वयं चेतन चट्टान में है, एक बार कृष्ण नाम करो, जीवे साधनाई तो पाप। एक बार कृष्ण नाम लेने से जीव उतने पाप भी नहीं कर पाता, अपना प्रायश्चित करने के लिए जीव के पास कृष्ण नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों के मध्य इस मंच पर आसीन है अपने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के मूर्धन्य विद्वान, जिनका की इस सेवा कुंज में ही और जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जमुना तीर का दर्शन किया था, उस दिव्य स्थान के समीप ही जिनका स्थान है, ऐसे प्रकांड विद्वान जो कि यहाँ पर अपने जो गौड़िया वैष्णव शास्त्र हैं, उन ग्रंथों का भी यहाँ जो शिक्षा अपने वैष्णवों को देते आए हैं, ऐसे पंडित श्री लक्ष्मी नारायण दास जी हमारे मध्य इस मंच पर आसीन है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैं यहाँ पर उपस्थित भक्त समुदाय को अपने सुमधुर प्रवचन से संबोधित करें। भक्ति का जो वेग ये रागांगा भक्ति ये लुप्त हो गई। श्रीमान आप प्रभु कलयुग में भी आकर उस भक्ति को प्रचार करने की जीव का कल्याण करने की भक्ति को जागरण करने के लिए आप पधारे हैं। इनमें मुख्य रूप में श्री गोस्वामी के द्वारा ही गोस्वामी महापुरुष से अलग नहीं है। महापुरुष जी को जो अंदर की भाव महापुरुष जी को भीतर की भाव है प्रभु गोस्वामी के द्वारा प्रकट करना है। महापुरुष जी को ग्रंथ संकलन नहीं किया, गुरु गोस्वामी के द्वारा ही ग्रंथ संकलन किया। एक विशेष आवश्यक की विषय है हमारे गुरु संप्रदाय में इस गोस्वामी शास्त्र का विशेष चर्चा नहीं करेंगे। इस चर्चा का अभाव है। हमारे पास जो संपत्ति है यह अमूल्य संपत्ति है, किसी के पास नहीं है। एक जगह एक चार संप्रदाय की सुहागन जी उसमें सब अपना अपना संप्रदाय थी पढ़ाई करने लगा। हर संप्रदाय के साहित्य तो शक्ति उठे है अपने अपने संप्रदाय का प्रारंभ पाठ करने लगा। फिर एक व्यक्ति ने कहा बोले कुछ भी पढ़ो वो क्या संप्रदाय की जो संपत्ति है इनके साहित्य के ऊपर कोई भी संप्रदाय का साहित्य नहीं है। गुड़िया संप्रदाय के साहित्य सर्वोपरि है क्योंकि इसमें दो विषय वर्णन किया गया है। उन्नत संप्रदाय के लोग इसको भी अपने अपने ग्रंथ में संकलन करते हैं परंतु हमारे सर्वस्वामी जो है वो भी संप्रदाय के आधार पर नहीं है, सभी संप्रदाय का आधार पर माना जाएगा। ये तो हम लोग अलग अलग भाव लेते हैं परंतु ये सभी संप्रदाय का आधार है।
गोस्वामी जी का वर्णन का कोई अंतर नहीं है, हद कर दिए। उठना चाहिए। हमारी बड़े बड़े दक्षिण विद्वान जनता नहीं तो एक मूर्ख ही समझ ली। इसका इशारा भी करता हो कि ग्रंथ का सच्चा होना चाहिए। इसका देह अनंत देह है। जो राजा का मार्ग की उपासना है वो कहते हैं मां महादेव जी इनके भी अगर जाके सर्पों का शिरोमणि सब कुछ जानते हैं पर उसको निकुंज में आएगा था और नहीं जानते।
जगन्नाथ के सामने नृत्य करते थे।
पूरा जीवन ही अगर निकल जाए तभी श्री रूप गोस्वामी पाद का जो जीवन का इस वैष्णव जगत के लिए जो देन है, जो उनकी लीला है, जो उन्होंने ग्रंथों का लेखन करके वैष्णव जगत को मार्गदर्शन किया, फिर भी वह इस जीवन में समाप्त हो गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराज श्री के विशेष कृपा पात्र जिन्होंने कि महाराज श्री के अनुगत में उनके श्री चरणों में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर अपने को महाराज श्री की विशेष कृपा का पात्र बनाया, ऐसे श्री भक्ति वेदांत तीर्थ जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि वह श्री रूप गोस्वामी पाद के संबंध में अपने विचार प्रकट करें।
अनुसंधान प्रिय होकर के चल रहे हैं, कहीं कर्म मार्ग में, तो कहीं मुक्ति के मार्ग में कहीं परमात्मा में लीन होने के लिए परंतु भगवान की सेवा के लिए कितने जन समर्पित हैं, यह अत्यंत दुर्लभ था। जो किसी रूप गोस्वामी पाद ने चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करते हुए उन्होंने यह प्रकाशित कर दिया है विश्व जगत में। जो कि और भी एक चीज विशेष करके देखने को मिलता है हमारे श्री ब्रह्मवाद गौड़ीय वैष्णव समुदाय के अंदर में भी, और वैष्णव आचार्यों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। कोई लक्ष्मी नारायण की उपासना में तो कहीं श्री राम सीता की उपासना में और कहीं कृष्ण की उपासना, यहाँ तक कि ऐश्वर्य मार्ग में जगत के लोग ऐश्वर्य के अतिरिक्त माधुर्य को भी नहीं समझ पाते। माधुर्य को देख करके वे भट जाते हैं, अरे भगवान करके ऐसी लीला करेंगे इसलिए बहुत दूर हट जाते हैं। परंतु परब्रह्म गुरु प्रिया श्री हरि जिनकी भक्तों के अधिक प्रेम की वर्षता को स्वीकार करके वे लीला विनोद करते हैं। आज उनकी लीलाओं को प्रकटित करने के लिए स्वयं भगवान स्वयं ही अवतरित हुए और भक्त वर्षता को दिखाया। उसी प्रकार श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो कि समाज के लोग संसार के लोग भक्ति मार्ग से दूर दूसरे दूसरे मार्ग और भक्ति मार्ग में आकर के ऐश्वर्य मार्ग तक ही अपनाया, उससे आगे बढ़ नहीं पाए। बहुत से समुदाय के लोग जो कि कृष्ण की उपासना करते हैं राधा जी की उपासना करने में भी दिक्कत है और वे उनके भावों को ले नहीं पाते। दूसरी बात और समुदाय के लोग जैसे देखा जाता है राधा कृष्ण की उपासना करें भी तो सखिया भाव से उपासना तक ही सीमित रख दिया, इससे आगे उनका साहस और उनका विचार इतना प्रगति और प्रसार नहीं हो पाया जो कि आगे के विचारों को भावों को व्यक्त करते। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने ग्रंथित दिखाया जो कि श्री ब्रह्मवाद गौड़ीय वैष्णव समुदाय के अंतर्गत पूर्व आचार्य गण जितने भी हुए थे, श्री श्री श्रीमान मध्वाचार्य से लेकर के भी देखा जाए अधिकांश रूप में लोग नारायण की उपासना करते हैं। यदि कहीं देखा भी जाए तो उनके आदि में भी कृष्ण की उपासना हुई है, बाल गोपाल कृष्ण की, वो भी मर्यादा भाव से ऐश्वर्य भाव से इससे आगे नहीं बढ़ पाए। और जब किसी चैतन्य महाप्रभु जी आए उनसे पहले श्री मानवेंद्र पुरीपाती आए तो भक्ति भक्ति प्रेम पंपवृक्ष के अंकुर स्वरूप श्री मानवेंद्र पुरीपाती आए, तब से राजानुगत भक्ति की बातें देखी जाती। और उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए राधा भाव विभूषित होकर के उन्होंने कुछ भाव का आस्वादन किया। परंतु श्री रूप गोस्वामी पाद ने और भी एक अभिनव चमत्कार का दिखला दी जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के अत्यंत गुण रहस्यमय भाव वृषभानुगंधिनी राधा जी के अनुगत में जो कि राजानुगा भक्ति से भी बढ़ करके रूपानुगा भक्ति जो कि मंजरी भाव को प्रकाशित कर, पहले के लोग सखी भाव से उपासना करते रहे इससे आगे आप देख भी नहीं पाए समझ नहीं पाए। परंतु हमारे गुरु स्वामी जिन्होंने ये सखी भाव से भी बढ़ करके राधा जी के दास रूपी भाव को प्रकाशित कर दिया। सखित पद को नित्य नमस्कार करते हुए रसायते मम रसस्तु रसस्तु संतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत करते हुए रूपानुगत हो करके उनके भावों को व्यक्त कर दिया कि हे वृषभानुगंधिनी राधे जो आपके सखित पद को नित्य नमस्कार है मुझे आपके दासित्व का भी चाहिए। दशायते मम रसस्तु रसस्तु सप्तम इस प्रकार हम देखते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो गौड़ीय आचार्य गण हुए हैं वे वृषभानुगंधिनी राधा जी की इस प्रकार किंकरी वर्ण करके उनकी सेवा की भावना जो प्रार्थना की है उसमें मंजरी भाव को परिस्फुट कर दिया। और विशेष करके सभी गौड़ीय वैष्णवों ने श्री रूप गोस्वामी जी के चरण की प्रार्थना की और उनके विचारों में स्नात होकर के रूपानुगत का एक गौरव प्राप्त कर दिया जो कि जो कि विष्णु भगवान ने राधा जी की सेवा करते हुए उनके भाव में तद्भाव भावित चित्त जो कि संपूर्ण इच्छा वाली भक्ति को छोड़ करके तत्त्व भाव इच्छा वाली भाव में ही प्रकाशित हुए हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसा में सिंधु में जो कि पावन का भक्ति में भी संपूर्ण इच्छा वाली और तत्त्व भाव इच्छा वाली भक्ति को उन्होंने प्रकाशित करके दिखाया। संसार में जितने भी हैं सब कमल कुला भक्ति में सखी भाव में और द्वारका के भाव में कहीं सखी भाव में वहीं तक ही सीमित रह जाते हैं, उससे आगे के विचार दिखा नहीं सकते। श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस प्रकार मंजरी भाव को प्रकाशित करते हुए दिखाया। और भी हम लोग दुर्भाग्य से समान करते हैं जो विश्व आनंद श्री राधा जी की अंतरंग खास परिचारिका है और विशेष रूप से जहाँ पर सखियों का प्रवेश नहीं हो सकता है केवल मात्र श्री रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी जी वहीं पर प्रवेश करते हैं और राधा जी की अंतरंग सेवाएं करती है। तो इस प्रकार के जो श्री रूप गोस्वामी पाद जी आज हम लोगों ने जो कि उनके एक विचारों में श्री उज्जल निर्मल से भी हम लोगों ने गुरु जी से श्रवण किया था सखिया और परकिया के विचार में जो कि संसार के लोग सखिया से बढ़ करके आगे परकिया से भावों को धारा में नहीं ला सके क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद ने दिखाया एक भावों की पराकाष्ठा भावों की पराकाष्ठा परकिया में ही देखा जाता है न कि सखिया में। श्री राजीव गोस्वामी पाद ने श्री रूप गोस्वामी जी के अभिप्राय को वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि सखिया और परकिया में अंतर कहाँ है। सखिया में तीन दोष आता है जबकि परकिया में ये चीज नहीं है, इसलिए हमारे गौरी गुरु भरत ने इसी को अपनाया और उस भाव को दिखाया जो कि सखिया में पहले पहले तो कुछ समय के लिए आकर्षण बना रहता है, कुछ दिन पश्चात वो खत्म हो जाता है और एक दूसरों में दोष देखते देखते प्रेम की लघुता हो जाती है और तीसरे नंबर में सखिया में एक को अधिक बन करके पत्नी को अधिक पुरुष के अधिक बन करके रहना होता है, तो इसकी प्रेम की साधनता नहीं है और व्यक्ति की साधनता नहीं है इसलिए प्रेम उतना परिष्कृत नहीं होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने दिखाया कि परकिया में ये सब संभव नहीं है क्योंकि कभू मिले कभू ना मिले दैव रघुवर श्री चैतन्य चरितामृत में भी बोला है कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने ये दिखाया कि हजारों बाधाओं को अतिक्रम करके जहाँ पर राधा कृष्ण का मिलन होता है वहाँ प्रेम की और प्रगाढ़ता परिष्कृत होती है। दूसरे नंबर में गोपियां कभी भी कृष्ण को दोष के नजर से दोष के दृष्टि से नहीं देखा। तीसरे नंबर में जबकि गोपियां अपना घर का खा करके अपना खाइया प्रीति करने रहते गाड़ी में भरे चंद्रदास और विद्यापति के क्रोधों में भी देखा जाता है जो कि गोपियां और राधा जी जो कि अपने प्रेम की साधनता में बनी रही और कृष्ण के साथ में जो प्रेम है और उस प्रेम में क्या है ये प्रज्ञा को सिखाया कि प्रज्ञा भाव में ये तीन दोष नहीं है जो कि सखिया में आ जाता है, इसलिए सखिया नीचे उतर जाता है प्रज्ञा भाव उन्नत रूप में और भी प्रकाशित हो जाता है। उसमें और भी एक चीज दिखाया गया जो कि वृत्ति कंदकाओं तक हो और जब उनमें भी प्रक्रिया सद बुलाया गया क्यों इनमें भावों की प्रकाष्ठा विवाह विधि इत्यादि से लेकर के कोई भी विधि नियम आदि की अपेक्षा नहीं रखती जबकि छोटी छोटी ब्रज गोपियां उस समय से कृष्ण के प्रति उनका अनुराग प्रदर्शित हुआ है प्रकाशित हुआ है इसलिए प्रेम की प्रकाष्ठा उनमें है भावों की पराकाष्ठा किसी सीमित में नहीं होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा है प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव राग के पश्चात जब अनुराग आता है तो अनुराग का लक्षण होता है जबकि कृष्ण को नव नवायन रूप में अनुभव करा दे प्रतीक्षा नित्य नूतन रूप में अनुभव करा दे तब उसको अनुराग सकते भाव अपने आप आता है जैसे वहां प्रभु जी ने आया कि इतना भाव आता है कि उस समय वहां प्रभु जी से भी कंट्रोल नहीं हो सकता है उस समय उन्माद की स्थिति बन जाती है और भाव अपने चाहे जितना चाहे उतना ही प्रकाशित होते हैं इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि संत भाव उत्पत्ति भाव संधि भाव संत भाव सावधान और भाव शांति इस प्रकार भाव भावे लागे घोड़ा घोड़ी भाव भावों की घोड़ा घोड़ी लगता है और भी कहा है महाप्रभु ने यह एक कुर्वास काहे मत गलेगा वह जैसे बने रहता महाप्रभु शरीर कैसा है कि एक वन है गन्ने का थे और उसमें जो भावों की जब करता है ये सभी भाव उन्मादित होकर के इस प्रकार आ जाते हैं जैसे कि एक मत हस्ती है पालो हाथी जैसे आ जाए और गन्ने के खेत में घुस जाए तो सारे खेती तोड़ मोड़ करके चुन चुन मार करके फेंक देते इस प्रकार जो कि भावों की स्थिति है भाव अपने द्वारा सीमित नहीं हो सकता जो स्वयं ही सीमित होता है स्वयं ही प्रकाशित होता है और उसमें महाप्रभु जी इस प्रकार उन्मादित हो जाते हैं ऐसे वृषभानंदनी राधा जी के भाव भी जो कि भाव महाभाव उससे भी बढ़कर के महाभाव की पराकाष्ठा है वृषभानंदनी राधा जी और विरह की स्थिति में तो कहना क्या है रूढ़ अनिरूढ़ मोहन मोदन मादन दिपन वार चित्र जल्प आदि भावों की व्याख्या करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद ने ये अभिनव चमत्कारिता साहित्य में प्रदर्शित किया जो कि और किसी भी साहित्य में कहीं पर भी प्रकाशित नहीं है न कि कहीं भी देखने को मिलेगा यहाँ तक कि जितने भी पुराण साहित्य वेद वैदिक सिद्धांत है शास्त्र है कहीं इतना रस का वर्णन इतना विविचन इतनी व्याख्याएं नहीं हुई है पर कृष्ण रूप गोस्वामी पाद ने इस प्रकार व्याख्याएं दे करके श्री राधा जी के भावों को उद्घाटित किया और सहज उसी भाव में डूब कर विश्व जगत को दिखाया कि हे विश्व के रसिक जन हे भावु जन इस रस का पान करें और उसमें अवधारण करें तो यही जीवन का सार है मैं यही कहूं कि सब
श्री भक्तिवेदांत जी महाराज ने अभी आप लोगों के सम्मुख जो गौड़िया संप्रदाय की विशिष्टता है राधा भाव उस तत्व को आपके सामने रखा वास्तव में अगर इस सत्य को कहा जाए और अक्सर मैं इस सत्य को इस भारत की भूमि पर नहीं विदेश में भी कहता हूं कि राधा भाव को और राधा को कृष्ण के समीप पूजित करने के लिए महाप्रभु की ही प्रेरणा थी और महाप्रभु से पहले किसी की प्रेरणा ही नहीं श्रीमन महाप्रभु के पहले जो राधा तत्व है और राधा भाव है वह इतना विकसित और प्रचारित नहीं था राधा को श्री कृष्ण के साथ प्रतिष्ठित करकर राधा कृष्ण की पूजा अर्चना जो प्रारंभ कराई उसी चैतन्य महाप्रभु की ही देन ब्रज लीला में भगवान कृष्ण के मन में तीन वासनाओं का उदय हुआ था जब भगवान कृष्ण ब्रज लीला में थे तीन उनकी मन में इच्छा उत्पन्न हुई थी पहले की राधा के प्रेम की महिमा कैसी दूसरा जिस प्रेम के द्वारा श्रीमती राधा रानी मेरी अद्भुत माधुरी का आस्वादन करती है व वह मेरा माधुर्य कैसा है। तीसरा, श्री राधा को जो मेरे माधुर्य का सुख प्राप्त होता है वह सुख कैसा है। तो भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं में इन तीनों इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही राधा कृष्ण के जुगल अवतार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का इस कलयुग में अवतरण। यह कलयुग के जीव के ऊपर परम कल्याण का उनका यह अवतार। इस राधा तत्व की महिमा, ब्रज की जो लुप्त लीला स्थली उनको पुनः प्रकट करना, प्रेम तत्व क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है, इस प्रेमा भक्ति को प्रकाशित करना, हरिनाम का जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हरिनाम को वितरित करना, यह महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण। इसी क्रम में अब मैं श्री महाराज के एक और विशेष कृपा पात्र जिन्होंने की महाराज श्री के श्री चरणों में रहकर शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की, ऐसे श्री श्याम सुंदर जी ब्रह्मचारी जी से आग्रह करूंगा कि वह यहाँ पर आकर श्री रूप गोस्वामी के विषय में उपस्थित भक्तजनों को अपना मार्गदर्शन।
आजे कल
कल आज तो हाजिरी है बस।
आज
राधिकाय ओम
शब्दों का प्रयोग करती है, कोई भी
पास गाय है स्वर्ग रस परक, वो कभी भी इस तरह से अपने भगवत विग्रहों के प्रति आचरण नहीं करते, ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसलिए कृष्ण जो समस्त अवतारों को भी अतिक्रमण करे, समस्त रसों का शिरोमणि होकर अखिल रसामृत मूर्ति, जितने भी भगवत विग्रह जितने भी रस में है, लेकिन कृष्ण जो संपूर्ण रसों को संपूर्ण रूप से संपूर्ण प्रकाश से स्वादन करते हैं, जो अन्य विग्रहों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अभाव है, कहीं रूप का, कहीं गुण का, कहीं वेणु का, कहीं लीला का, लेकिन कृष्ण जो संपूर्ण रूप से विराजते हैं, क्योंकि इनके परिकर जो है एक अस्मोट रूप से, क्योंकि परिकर वैशिष्ट है भगवत वैशिष्ट, राधिका जी का जो वैशिष्ट है उनका जो भाव है कृष्ण को ही अतिशय सेवा प्रदान करने की भाव को धारण करते। इससे रूप से पाली बोले राधा प्रयाण विदुर जयत, कृष्ण जितना जय युक्त हुए वो महिमा बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि राधा जी अतिशय राधिका जी उनका अत्यंत प्रियतमा है और एक इनके अत्यंत प्रिय, यही कारण है कि कृष्ण संपूर्ण अवतारों को अतिक्रमण करके स्मूर्त होकर के नित्य परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले होकर विराज। इसलिए विधु विधु जय विधु शब्द की व्याख्या जो उसी बात करते हैं कि विधु तो समस्त भगवत अवतारों के लिए प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर करते नहीं हो सकता, क्योंकि विधु का जो अर्थ है विशेष है, विधनोति सर्व दुखम और विधाति सर्व सुखम जस विधु, जो भगवत विग्रह संपूर्ण सुखों को दे सकते हो, संपूर्ण दुखों को खंडन कर सकते हो, विधु पदवाच्य विधनोति विधाति खंडयति और ददाति विधाति सब विधु। अगर रघुनाथ पाद जैसे कोई जन राधा कुंड के तट पर बैठे विलाप कर रहे हो, जबकि कृष्ण का सामर्थ्य है दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दुखी लोग हैं जिनके दुख को कृष्ण भी दूर नहीं कर सकते, वो तभी कर सकते जब राधा प्रयाण विदु जयत। जगत में बहुत से दोलाभाव ग्रस्त हैं, किसी को साधारण जगत का ये नहीं है सो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दुख के समुद्र में पड़े और कोई अभाव का दुख नहीं, उनके घर में कोई नमक नहीं है, सब्जी नहीं है, चावल नहीं है, ऐसा नहीं, उसके लिए तो परवाह ही नहीं करते, केवल एक दो ना मट्ठा पीने वाले और कभी सूखे चना को चबा के रहने वाले, लेकिन भी कह रहे ये भी सागर उतरे जुड़े मान मे राधिके मैं दुख के समुद्र में पड़ा, ये जो चिंता ये जो हृदय की जो व्याकुलता श्री रूप चिंता, रूप को समझ की कृपा है, नहीं तो जो हमारे जितने भी गुरु वर्ग है ये जो इतने रसिक है, इतने भावुक है, इतने तत्वज्ञ है, सबके मूल में रूप को स्वामी जी, रूप जी पूरे हमारे गुरु वर्गों का सौंदर्य, इनका माधुर्य, इनका जीवन, इनका प्राण है, यदि उनको हटा दिया जाए तो जितने हमारे अंदर रस माधुर्य सौंदर्य कुछ भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो जिस प्रकार से राधा जी के भावों को निरूपण करते, जिस प्रकार से हमारे हृदय को संदर्भ करते, रघुनाथ पाद करते हैं उनकी चिंता के द्वारा, कोई कैसे चिंतन कर रहे उसमें भावित होकर के मैं दुख के समुद्र में पड़ा हूँ, अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई स्थान नहीं थी, बीच में और छोड़ नहीं, कृष्ण को भेज दे, क्योंकि कृष्ण तो बहुत बड़े नाविक है, पता नहीं कितने जीवों को संसार सागर से पार लगा रहे, रघुनाथ पाद जी का दिन कृष्ण भी मेरे को उद्धार नहीं कर सकते, जितने भगवत विग्रह की उपासना करने वाले उनमें कृष्ण उपासक सर्वोपरि, लेकिन उनमें जो राधिका जी का अनुगत में जो भजन करते हैं और भी सर्वोपरि, क्योंकि उनके मन को कृष्ण भी नहीं खींच सकते, और उनका जो रूप गोस्वामी जी को अनुगत में भजन करते हैं उनका कोई तुलना कोई उदाहरण नहीं, क्योंकि राधिका जी कहीं ऋणी नहीं है, कृष्ण इनके चरणों में ऋणी हो जाते, राधिका जी को कहते हैं कि आपका प्रेम हमने देख लिया, आप भले जितना कहो कि मैं आपके बंदा नहीं चुका सकता, आपका प्रेम बहुत है, ना पा रहे बस आप क्षमा कर दो और मैं चेष्टा करूं तरह तरह से अनुनय भी नहीं करके केवल एक उलझाने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा कि आपका प्रेम ऐसा है कि आप चार घंटा भी किसी प्रेमी के प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आप सुबह में आ सके मथुरा और शाम को एक दिन ही मथुरा का रास्ता शाम या दूसरे दिन सुबह में पूजा सुनी और तुरंत उनको बोले सुंदरी जी आपका परिचय किया, आपका ये प्रेम की स्थिति है। ऐसे आप प्रेमी है जो प्रेम की प्रतीक्षा नहीं करते और हम ये कहें कि जन्म जन्म तक इतने समय तक प्रतीक्षा करते हर परिस्थिति में आपको जैसा लगे करते, लेकिन हम हमारे प्रार्थना से केवल कृष्ण हमारे क्या प्रेम के बंधन आप हमारे क्या दे सकते। जहां पर कृष्ण पराजित हो जाते हैं लेकिन राधिका जी रूप जी के सानिध्य में पराजित होते हैं कि रूप गोस्वामी रूप मंदिर पर जिस तरह से उनके भावों की जगह तक व्यक्ति किए अपने आप का मोड़ दिया, नहीं राधा जी की हृदय का और वो कौन बोलेगा। राधिका जी नहीं बोलते क्योंकि कृष्ण प्रेम एक ऐसी वस्तु है वो अंदर में छुपा देती, ये बोलने का भी सही नहीं क्योंकि दीप सिखा के संभाले। राधिका जी बोले कि मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ प्रेम लगता हूं कहते, कृष्ण भी नहीं बोलते कि मैं इतना प्रेम करता हूं। ये प्रेम ऐसा है जो वाणी का विषय नहीं, लेकिन जगत जी उसको कैसे अनुभव करेंगे, कैसे उनको थोड़े कंसेप्शन धारणा बनेगी। रूप गोस्वामी पाल जी महाभुज की कृपा से तो बोले नमो महाबदन नाय, महाभाव कृपा करके दिए और तब उनके भावों को इस तरह रस की विवेचना कर रहे थे, रसों की विवेचना बिना अलंकार बिना प्रेक्षा बिना ध्वनि और बिना उपमा के द्वारा प्रकाशित होना उतना सौंदर्य नहीं हो सकता। इसे रूप गोस्वामी जी के हर श्लोकों में जैसा उन्होंने काव्यों का प्रयोग क्योंकि राय रमन बात जी बोले राय रमन जी बोले कि जब तक ऐसे रसात्मक श्लोकों की रचना न की जाए तब तक रस का प्रचार जगत में नहीं हो सकता। और इसलिए रायरमण प्रभु जी को साधारण नहीं जो महाप्रभु जी के साथ साध साधन तत्व का जहाँ पर निर्णय दे रहे हैं उद्भट विद्वान, किंतु रूप गोस्वामी पाल जी कवित्व को जब देखे उन्होंने बोला जरा पूर्व राग का वर्णन करो तो कैसे आपने किया है। एक श्रुतम एव नुम पति मति कृष्ण यदि नामाचरण सांदो मान परस्पर प्रेम संबंधि कला ऐसा घना तिथि लग्न पति विचनाथ कष्ट भीक पुरुष त्रय रते पुण्य मान्य
प्राप्त हो गई। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता मैं कहां जाऊं,
कोई घर का द्वार नहीं दिखाई पड़ता, कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता, यही दौड़ रहे। ललिता जिनको पकड़ रहे, बोले जो बंसी बजा रहे उसको तुम नहीं जानती लेकिन मैं जानती हूँ, और बजाने वाला जितना सुंदर बजाता है उतना सुंदर वो नहीं है। हाँ हो सकते बाहर से सुंदर दिखाई पड़ता हो, लेकिन जैसे मोर होता है, मोर बहुत सुंदर दिखता है, मन को आकर्षित करता है, बोलता भी बहुत अच्छा है, के का के का, लेकिन हृदय इतना कठोर होता है कि बड़े बड़े सर्प को खेव ही निकल जाता। इस तरह देखने बहुत सुंदर लेकिन बहुत कठिन हृदय कठोर है, इसलिए मन रोक रहे। लेकिन गुरु गोस्वामी कहते काय नम्र विनम्र मूर्ति करम हरिम जामी न सहज पापी न जसो कर जति मुरली प्रगट कर। विलंब मत करो, मेरे हाथों को मत पकड़ो, मुझे जाने तो कैसा है क्या है वो मुझे याद नहीं पड़ता। ये तो बंसी कैसी करामत, मैं तो केवल ध्वनि सुन के जा रहा हूं, बजाने वाला भैया है मैं कौन है वो तो उसका काम, लेकिन बंसी की ध्वनि ऐसी है तुम स्थिर हो जाए। दर्शन में कुछ नहीं, केवल संगीत सुन करके दौड़ रहे हैं। जगत में ऐसा कोई प्रेम उदाहरण होगा बिना जाने सुने दौड़ो? नहीं होता। सत्यम बृहस्पति फल गिरा, राधिका जी बोले रूप गोस्वामी का भाव, तुम जो कह रहे सत्य है, किसी अंजान के पीछे संगीत सुन करके दौड़ना ठीक नहीं, क्योंकि हमारा खुद बड़ा निर्मल, हम यो भागेंगे तो लोग क्या क्या बोलेंगे। उधर जी बोले दिए ये माँ स्त्रियों ब्रह्मचरी लौकिक दृष्टि से कहा है और कहा कृष्ण, क्या क्या शब्द क्या क्या सुनना पड़ता है, हम जानते हैं। सत्यम कुलम कृष्ण की मन मुरली के जो राग की गति है, जो आलोहन अभियोगन है, गुच्छा आदि से युक्त जो उनका स्वर है, पता नहीं क्या है तो जड़ कोई चेतना नहीं है, लेकिन कम कसम का रावण सुन रहे हैं एक एक विषय पर, नाम के ऊपर, बंसी के ऊपर, उनके रूप के ऊपर, उनके गति के ऊपर, उनके अवलोकन विलोकन, उनके हंसने के ऊपर, प्रत्येक एक एक अंग प्रत्यंग का, जैसा लोगों को आज रस का विवेचना कर रहे हैं, अखिल रसानुभूति का वर्णन कर रहे हैं, याद करके विश्वास ये उनके तदार्थ है, उनके हृदय के प्रत्येक भावों को राधिका जी दे न दे ले लेते हैं, लेने के बाद असंतुष्ट नहीं होती, बहुत खुश होती। महाप्रभु जी के लिए जब भावों को उन्होंने चुराया, जब अवमान कर महाप्रभु जी आपको लगे तू हमारे अंदर से कैसे घुस गए, जब उनकी कृपा उनके जन अंदर तक से हृदय के भावों को भी छीन ले, कह रहे हैं क्या है जड़ है लेकिन कम उत्पन्न शास्त्र नहीं है। गुरु गोस्वामी का वर्णन है पद्यावली आप देखेंगे उनमें और कई जगह पर, कम संपाद शास्त्र नहीं लेकिन शरीर को काटता है, ताप नहीं है कोई गर्मी नहीं है शीतल है लेकिन फिर भी उष्णता को धारण करते कोमा आय हुई है। उसी समय एक चित्रपट का दर्शन किए, चित्रा संगीत दिखाए कृष्ण, गुरु गोस्वामी बोलते चित्र क्या महेंद्र मणि मंडली मदन गंगी देव, नीलमणि इंद्रमणि के जितना भी मेघ आदि के सौंदर्य है, नीले वर्ण के जितना भी जगत में सौंदर्य है सब को पराजित कर। इस प्रकार रायमन और पूछते और कहो, इस प्रकार
आठ
इस प्रकार वहां पर जिस प्रकार कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं उसी प्रकार राधिका जी का सौंदर्य वर्णन करें, जो पूरे विश्व उन्होंने तो दिया कृपा करके, जिन साधक जिसको श्रवण करके सुन करके स्वाभाविक उस ओर अग्रसर हो सकता है, बिहार श्रुति मना मनो कणिंद्र इत्यादि विलोचन चकोरे शरण चंद मंदा प्रभा पूर्व अमर तदस्य निर्मुता कल्याणी जिम्बा, बड़े बड़े कवि हुए लेकिन रूप गोस्वामी काव्यों के आगे, चाहे कोई उपमा वाले हुए चाहे कोई अलंकार के कवि, अलग अलग कवि अलग अलग विषयों पर, लेकिन गुरु गोस्वामी संपूर्ण विषयों का लिंग देता है, उपमा कालीन विरासत से भाग गया कि गौरव ऐसी थे बदलादित्य लेकिन रूपे संति त्रयो गुण जितने भी काव्यों के चमत्कार है गुण है रसासार सुरारु सुरारी संसार सर और धाराधरी धराधर दीर्घराज दादी ओदम राजा धुरंधर रसा महाराज सार सलास सालाद सा बना नाम वारला आसमान तमासम करवा के सदा लोग का कलो दाय विनाम कर कबला दे तुसानु का कनुता भी मतलब एक एक अलग अलग छंदों का काव्य और एक ही काव्य में अनंत छंदों का समावेश कद खंड ग्रंथ से खंड ग्रंथ खंड सुरत किंग से गंड दिजपति तुंड स्मर सुरस कुंड प्रकट किचंड स्थित गंड सुरत सुंगा इति मुज गंडा प्रलय करंदा अटल चंडा सुजल भारती गणित विदांती एक ही श्लोक में कई काव्यों का मिश्रण दो लाइन के बाद काव्य को कलमदार के छंद को बदल इस प्रकार प्रजापति पल्ली परिसर मल्ली उनके काव्यों को देख करके सुन करके सहज में भक्ति हो जाती है कुछ न जाने इसको पढ़ेगा कहीं भी आंखों से आंसू आएगा हृदय में रोमांच हो जाएगा गदगद हो जाएगा और लगेगा कि बस संसार में और कुछ नहीं और वास्तव में भागवत विषय काव्य को छोड़कर इस जगत में आस्वादन में कोई वस्तु नहीं अगर कोई आस्वादनीय वस्तु है तो केवल वही रूप गोस्वामी का काव्य है उनके जो विवेचना है भक्ति का सौंदर्य हमारे लिए स्वादीय
आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं कल ठीक 5 बजे से फिर सभा आरंभ होगी विद्वान वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी सप्ताचार्य और क्या क्या वो आएंगे और हमारे वृंदावन के गौड़ीय भक्तों के रसिक और तत्व विद्वान हमारे भट्ट जी जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की परंपरा में ये कल आएंगे और भी विद्वान आएंगे इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कल भी आइए और परसों भी यहाँ पर उसी समय से आरंभ होगा बड़े बड़े विद्वान लोग अपने विचारों को प्रकट करें उनके द्वारा हम सुनने के लिए ये आयोजन करते हैं बोलने के लिए नहीं ऐसे ऐसे विद्वानों का रसिक विद्वानों का तत्व वैष्णवों का मिलना बड़ा भारी दुष्कर है किंतु आप लोगों के लिए सुलभ कर दिया गया है इसलिए अपनी झोली में कुछ ले करके जाएंगे और वैसा ही भजन करेंगे और ये बतलाया ना हमारा हमारे भजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए राधा आश्रम चैतन्य महाप्रभु यीशु को देने के लिए आए थे नर्तिचरिं चिरात करुण्यावतीर्ण कलौ समर्पयितुं उन्नतोज्ज्वल रसां सर्वं एक कल्प के बाद में चैतन्य महाप्रभु उन्नत उज्ज्वल रस की शोभा को देने के लिए आए उन्नत उज्ज्वल जो भाव गोपियों का है ये जीवों को नहीं दिया जा सकता ऐसा ही वो नहीं दिया जा सकता इसलिए उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति स्वमान्य राधिका राधिका जी के जो भाव है उसका तो आस्वादन करेंगे और आस्वादन किया वो नहीं दिया जा सकता उसकी शोभा जिस प्रकार से भक्ति कल्पलता है भक्ति को एक कल्पलता माने राधा जी कल्पलता है और सखियां उसके पल्लव और पुष्प है और मंजरियां उसकी और शोभा को बढ़ाती हैं हल्के शीतल मंद वायु के छकोरे से जब मंजरियां हिलती हैं तो लता की शोभा और बढ़ जाती है इसलिए राधिका जी की भावों की शोभा ये मंजरियां हैं इन मंजरियों का भाव देने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है यही चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी ने इसकी स्थापना की है, जिसके विषय में विद्वान ने सब बोला कहा है और आगे भी कहेंगे, आप लोग कृपया बताएं। यही बोल करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।